हम जैसी जिंदगी आज बसर कर रहे हैं ना, कल हमारी ऐसी होंगी। जरा एक लम्हे के लिए सोचे तो सही, अपने ऊपर लें कि क्या मेरे मरने के बाद लोग लिसान सिदकिन मेरे लिए करेंगे या लिसाना कुछ और। मैंने एक इंग्लिश की बुक पढ़ी थी, मैं कांप के रह गई थी उसको पढ़ के, आपके साथ शेयर करती हूँ यहाँ इस मौके पे, लगता है कि बहुत ही मुनासिब है। एक शख्स है, उसको खबर मिलती है कि किसी की डेथ हो गई है और उसका फ्यूनरल है। ये अंग्रेज़ था यानी नॉन मुस्लिम, मैंने अमेरिकन बुक में पढ़ी थी ये चीज़, यानी इस्लामिक बुक नहीं थी वो। तो एक शख्स को खबर मिली कि फलां चर्च में अब किसी का फ्यूनरल है, तो तुमने वहाँ जाना है। अब ये अमेरिकन करते क्या हैं कि जब किसी की डेथ सेरेमनी होती है तो पूरा उसको सजाते हैं, संवारते हैं, फिर उसको रखते हैं, फिर सारे उसके रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले जो लोग हैं वो आते हैं और वो सब फिर माइक पे आके उसकी खूबियाँ, सिफात, जो कुछ होती हैं वो बयान करते हैं। और उसके बाद मुख्तलिफ गिरोहों से उसके लोग आते हैं, उसके बिजनेस के, कुछ घर के, कुछ ससुराल के। इसको भी खबर मिलती है कि कोई मर गया तो मैं चलता हूँ ना। तो जब वो तैयारी करके जाता है, वहाँ जाके देखता है बहुत सारे लोग तैयार हैं इस तरह से और कुछ बातें करते कराते, और हर बंदा उसके बारे में कमेंट्स दे रहा है ना, जो भी उसने देनी है। फिर उसके बाद जो सारी बात का खुलासा क्या था कि जब वो सब लोगों को की चीरता चीरता आगे जाता है आगे जाता है, तो एकदम वो जब कफन को खोलता है, ताबूत जब खुलता है जिसमें डेड बॉडी है, तो वो चेहरा देखता है तो वो खुद होता है, यानी वो अपनी फ्यूनरल सेरेमनी में आया हुआ है। वहाँ खड़ा होकर वो सोचता है कि जब मैं मरूँगा तो मेरे इन लॉज आएंगे तो वो मेरे बारे में क्या बातें करेंगे, मेरे कुलीग्स मेरे बारे में क्या बातें करेंगे, और फिर वो चीख मार के वहाँ से भाग जाता है। यानी ये बात मैंने थोड़ी सी आपको मुख्तसर सुनाई है, मैंने इसको इस तरह लिया, इस पर पूरा एक मैंने तरबिया सेशन भी दिया था। क्या आप सोचिए, मैं मरी हुई हूँ, मेरी डेड बॉडी रखी हुई है और मेरे इन लॉज आ रहे हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे साथी, लोग मेरे बारे में क्या करेंगे। हमारा एक कल्चर है कि लोग ज़िंदगी में जो मर्ज़ी के मौत पे आके तारीफ़ें ही कर रहे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ यकीन करें वक्त ही होती हैं। दो चार दिन जब गम ठंडा होता है फिर शुरू होते हैं, फिर उसी की बुराइयाँ, ये नहीं करके गया, वो नहीं करके, अपनी ज़िंदगी में कर जाते, ये करते वो करते। अगर आप हकीकत में अपना असल देखना चाहती हैं ना कि आप कौन हैं, तो आप अपने आप को डेड हालत में सोचें, मेरे मरने के बाद लोग क्या सोचेंगे। नबी सल्लम के दौर में एक जनाजा गुजरा, आपने फरमाया कि मुस्तरीहुन औ मुस्तराहु अन्हु। क्या मतलब है कि या तो आज ये राहत में आ गया या दूसरे इसकी वजह से राहत में आ गए। पूछा क्या मतलब, कहा या तो ये दूसरों को इतना सताता था कि आज लोग खुश हो रहे हैं कि शुक्र है जान छूटी, सास का इंतकाल हुआ, और या फिर ये बेचारा इतना सताया हुआ था कि आज ये लोगों की बातों से अमन में आ गया। हम पूछे अपने आप को कि मैं मुस्तरी हूं या लोग मुझसे मुस्तराहुन है। एक जनाजा गुजरा, लोगों ने कहा कि बड़ी नमाजें पढ़ती थी, बड़े रोजे रखती थी, बहुत अच्छे काम करती थी, लेकिन जुबान से हमसायों को तकलीफ देती थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया वजबत वजबत वजबत, तीन दफा का वाजिब हो गई वाजिब हो गई। फिर एक और औरत का जनाजा गुजरा, लोगों ने कहा कि इबादत तो फ़र्ज़ की हद तक थी लेकिन इखलाक की बड़ी प्यारी थी, और सदका बड़ा करती थी, चाहे चीज़ के टुकड़े ही दे देती थी लोगों को, क़त के लफ्ज़ आते हैं। अल्लाह के नबी ने उस पर भी फरमाया वजबत वजबत। पूछा क्या अल्लाह के नबी, कहा पहली औरत पर जहन्नुम वाजिब हो गई और दूसरी पर जन्नत वाजिब हो गई। दो खाते हैं हमारे, एक हकूकुल इबाद का और एक हकूकुल्लाह का। दोनों तराजुओं को जब तक बैलेंस नहीं करेंगे सीधा नहीं जा सकेंगे। गाड़ी के चारों पहिए सीधे चलते हैं फिर ही पहुंचते हैं, सिर्फ एक टायर पंक्चर हो जाए तो गाड़ी रुक जाती है। कई लोगों की गाड़ियां क़यामत के दिन, यकीन करें, हकूकुल इबाद के व्हील्स का पंक्चर होने की वजह से रुकी होंगी। बड़ी फिक्र करें, यकीन करें, और यहाँ गौर करें, आखरीन की बात की, ये नहीं कहा मेरे दौर के लोग मुझे क्या कह रहे हैं, तो उनसे तो कुछ भी कहलाना आसान है। असल बात बाद की, और बाद में हमेशा वही चीज़ होती है जो सच होती है। नबियों को ज़िंदगी में मारा गया, मजनू दीवाना क्या कुछ कहा गया। आज देखिए नूह का नाम कैसे आता है, आज इब्राहिम का नाम कैसे है। असल बात यह कि आपके बाद कोई आपको क्या कहता है। चेहरे पे आके तो लोग बादशाहों को भी सलाम करते हैं, दिल में गालियां देते हैं। एक मालिक ने अपने किसी मौत के वक्त पे अपने गुलाम से या आका जो भी उसका मुलाजम था उसे माफ़ी मांगी कि मैंने तुम्हें बहुत सख्त सुर्ख कह दिया, मैं अक्सर तुम्हें डांटता रहता था, मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा नहीं जी, साहब बराबर है। कहा क्या बराबर है? कहा आप मुझे ऊंची गालियां दे रहे होते थे, मैं उस वक्त दिल में आपको दे रहा होता था, हिसाब बराबर हो गया। और यकीन करें जो लोग हमारे आगे नहीं बोल सकते वो दिल में बोल रहे होते हैं, कभी कभी फिर वो रिएक्शन से भी बोलते हैं, कभी उठने के अंदाज से, कभी चीज मारने के अंदाज से। आप बच्चों को देखें, आपके जो बच्चे आपके आगे ना बोले आप डांटे, वो जोर से पांव पटकेंगे, दरवाजा जोर से मारेंगे, ये बोलते हैं। इस जुबान को समझना चाहिए। तो दुआ क्या है कि अल्लाह मुझे इतना सच्चा कर दे कि मेरे बाद लोग मेरे अंदर कोई कमी ना पाए। या सिद्ध का एक और एंगल देखते हैं कि अल्लाह मेरे जाहिर और बातिन में फर्क ना हो। लोग ये ना कह दें कि बड़े खिदमत करके गए दीन की इब्राहिम अलैहिस्सलाम साहब, और बाद में देखें पता क्या चला कि सारा ही उनका ज़ाती फ़ायदा था उसमें। ऐ अल्लाह को मेरे कॉल और फेल का तज़ाद ना करें। और एक और भी मफहूम बनता है कि अल्लाह लोग मेरी वो तारीफ़ करें जो सच्ची हो, सिर्फ इनकी खुशफहमियों पे मबनी तारीफ़ें ना हो, और क़यामत के दिन देखें तो मेरा तो हाल ही कुछ और हो। अफसोस की बात क्या है कि अमूमन लोगों का हाल क्या है कि लोगों की ज़ाहरी नेकियां देखकर उनको नेक समझ लेते हैं, और उनका ख्याल होता है कि बस ये तो बहुत ही ज़्यादा अल्लाह के मुकर्रब है, और अब ये करने वाले भी होंगे और इनकी दुआएं भी कबूल होंगे। ये चीज़ बहुत बड़े धोखे का इंसान को शिकार कर देती है। आप क्या हैं कभी लोगों से ना पूछें, दो जुमले लिख लें, सारी दुनिया आपकी तारीफ़ करने लग जाए, कभी खुद को अच्छा ना समझें जब तक आप अकेले में खुद अपनी तारीफ़ ना करें, आपका दिल ना बताए कि आप अंदर से क्या हैं। और इसका अपोजिट भी लीजिए, सारी दुनिया आपकी मुखालफत करे, छुटला रही है, इनकार इनकार, आप ऐसे आप ऐसे आप ऐसे, कभी लोगों की वजह से डिप्रेशन में ना जाए जब तक आपका अंदर आपको ना बताए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। हर बंदा अपने अंदर को खूब अच्छी तरह जानता है, कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर बंदे ने अपने अंदर को अपनी बातों को अपनी कमाइयों के बस गिरवी रखा हुआ है। बलिल इंसान वाला नफ्स ही बसीरा, सूरत क़यामत में आता है कि बल्कि इंसान अपने आप को खूब जानता है। वलौ अल्क़ा मअज़ीरा, चाहे कितने उज़र बयान करे, लोगों के सामने उसकी बड़ी चीज़ें मौजूद हैं, बड़ी बातें मौजूद हैं, लेकिन ऐसा बंदा खुद को खूब जानता है कि मैं क्या हूँ। और ख़ुद को कैसे पता चले कि हम क्या हैं? मैं तो इसका सिर्फ़ एक जुमले में जवाब जानती हूँ, वल्लाही आपके दिल का इत्मीनान। सबसे पहले जो टोकता है ना हमें हमारे गलत काम करने पे, वो हमारा अपना आप टोकता है, ज़मीर, नफ्से लवामा। हाँ उसकी मौत हो गई हो तो फिर तो अलग बात है, लेकिन आपको खुद पता चलता है आप क्या करते हैं। आप कोई नेकी करके आते हैं आपका दिल खुश होता है, एक अंदर खिला खिलापन दिखता है, किसी ने नहीं बताया आपको, किसी को आपने नहीं अभी बताया, कहते हैं क्या बात है आज आप खुश बहुत हैं, आप कहते हैं आज अल्लाह के हुक्म से एक बहुत अच्छी नेकी हो गई, दिल खिलता है ना। और आप गुनाह करें, गलत करें, किसी से ज्यादती करें, किसी को नाजायज़ एक हाथ ही लगा दें, कोई चार जुमले ही सुनाएं, दिल में कुलक आती है? कौन बताता है? ये अंदर का चौकीदार, ये है गार्ड। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अतकवा हाहुना, तीन दफ़ा आपने युशीरु इला सदरी, अपने सीने की तरफ इशारा किया कि तकवा अंदर है, ये चौकीदार अंदर रहता है। अब आगे इसी दिल की सारी बातें आने वाली हैं, और यकीन करें कि इन आयतों को अगर हमने ज़ाया कर दिया तो हम ज़ाया हो जाएंगे। जो नबियों से ज़िंदगी गुजारने के तरीके नहीं सीखेगा ना, फिर दुनिया वाले तो उसको जो उनका दिल चाहेगा वही सिखाएंगे, वही बताएंगे। आज दुनिया में कहीं बच्चों को बोल्ड बनाने के नाम पे कहा जाता है इनकी खूब तारीफ़ें करो, इनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा, बच्चों को बिल्कुल ना टोको, है ना तरबियत के अंदाज़। पूरी एक बुक है कि वेस्टर्न स्टाइल में क्या तरबियत के अंदाज़ है, कई बिल्कुल नॉन इस्लामिक है, और मुझे यकीन है कि अगले वक्तों में उनको अपनी किताबों में से वो निकालने पड़ेंगे। बच्चे को डांटो नहीं, बच्चे को कुछ ना कहो, बच्चे को मना ना करो, ये ना करो, ये नहीं कहा। लिहाजा कुरान से जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल करते हैं। और ये दुआ कबूल हुई, सूरह सुआफात आयत 108 से 110 में हम पढ़ेंगे, अल्लाह ताला कहते हैं व तरकना अलैहि फिल आखरीन सलामुन अला इब्राहिम, हमने पिछलों में उसका जिक्र खैर छोड़ दिया। आप देखिए कि इंसान की कमज़ोरी है एक किस्म की दूसरों की मोहब्बत। हज़रत अली ने नबी सल्लम से पूछा था कि अल्लाह के नबी, मेरा बड़ा दिल चाहता है कि लोग मेरी तारीफ़ करें, लोग मुझसे मोहब्बत करें, मैं क्या करूं? चलिए यही सवाल कोई आपसे करे तो आप क्या कहेंगे? उनको खूब तोहफे दिया करो, उनको खाना खिलाओ, उनके आगे पीछे फिरो, यानी तसव्वुर में यही आता है ना, इजहार करो। अल्लाह के नबी ने इतनी गुर की बात बताई, आप किताबो जोहद की कोई भी हदीस की किताब देखें, आपको इंशाल्लाह ये हदीस उसमें मिल जाएगी। कहा कि अली, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए अल्लाह दिलों में मोहब्बत डाले, तो तुम उससे बेनियाज हो जाओ जो मखलूक के हाथों में, मत लोगों की तरफ देखो और अल्लाह की तरफ नजरें लगा दो। मुराद क्या कि अपने काम से काम रखो, यकीन करें आप अपने मकसद से प्यार करें, लोग आपसे प्यार करेंगे। आप अपनी जॉब से प्यार करें, जॉब वाले आपसे प्यार करेंगे। आप अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल से प्यार करें, आपके बच्चे आपसे प्यार करेंगे। आप अपने शौहरों की इज्जत से प्यार करें, शौहर आपसे प्यार करें। टिट फॉर टेट, एक हाथ से दीजिए कल मिलेगा, एक तरफ से आता है दूसरी तरफ से जाता है। अल्लाह ने तो खुद ही कह दिया कि इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाती सजदजलुर्रहमानुलहुम वद्दा, कुछ इस तरह का मफहूम है। तर्जुमा उसका ये है कि जो लोग ईमान ला के अमल साले करेंगे, रहमान उनके लिए खुद ही दिलों में मोहब्बत डाल देगा। क्यों आज हज़रत इब्राहिम से इतनी मोहब्बत मिलती है? वो तो हमें जानते भी नहीं, नाम भी नहीं सुना होगा उन्होंने हमारा, हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत अल्लाह ने डाली। फिर वो हदीस हुब भी याद कीजिए कि अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है तो फिर जिब्राइल से कहता है, फिर जिब्राइल आसमान वालों से, आसमान वाले ज़मीन वालों से कहते हैं कि तुम भी इससे मोहब्बत करो, और फिर चारों तरफ उसके लिए कबूलियत कायम हो जाती है। बेनियाज हो जाएं लोगों की मोहब्बतों से, बामकसद बने, लोगों को नफ़ा दें, इंशाल्लाह लोग मोहब्बत करें। कोशिश करें किसी को तकलीफ़ ना दें, यकीन करें आप किसी को कुछ भी ना दें, कुछ ना करें किसी के लिए, खैर की कोई बात की, किसी का काम, पैसे रुपए कुछ ना दें, एक काम कर लें, किसी को तकलीफ़ देना छोड़ दें, आप देखिएगा कि उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पड़ेगी। मूसा के लिए तो अल्लाह ने खुद कह दिया था, वालकई तो अलई का मोहब्बत मिन्नी, ए मूसा तेरे लिए हमने दिलों में मोहब्बत डाली, फिरौन जैसा जाबिर शख्स कई बार कत्ल की कोशिश के बावजूद तुझे ना मार सका। आज भी कुछ बच्चे होते हैं उनके अंदर फितरी मोहब्बत डलती है उनके लिए, शक्लो सूरत से नहीं मोहब्बत होती, अल्लाह डालते हैं मोहब्बत। पता नहीं उनके माँ बाप की क्या दुआएं होती होंगी कि अल्लाह उन बच्चों के लिए दिलों में मोहब्बत डाल देता है। वजालना लिल मुत्तकीन इमामा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस तरह की खूबसूरत बातें करते हुए आखिर में कहते हैं, वजालनी मिम वरासती जन्नत नईम, बस मेरी तो मंजिल ये है कि अल्लाह बना दे मुझे उन लोगों में से जो नेमत वाली जन्नत के वारिस हों। जन्नत क्या होती है, उनकी मंजिल? असल कहानी यह है कि अल्लाह बस दुनिया अच्छा के या बुरा के, ख्वाहिश क्या है कि अगर दुनिया में भी तारीफ़ हो तो वो इसीलिए हो कि लोगों की गवाहियां मेरे हक़ में अच्छी जाएं और मुझे जन्नत मिल जाए। बस मुझे वारसा थी जन्नत ही नहीं चाहिए। ये जो वारस है ना, ये वारिस की जमा है, जैसे साहिर की सहरा, तालिब की तलबा, कि अल्लाह बस जन्नत से किसी कम चीज़ पर मैं नहीं काफ़ी अपने आप को समझता, मुझे जन्नत चाहिए। इससे पता चलता है कि जन्नत की तलब करनी चाहिए। कोई ये मत सोचे कि जन्नत को मांगना या जन्नत की बात करनी इंसान के कोई दर्जे में कमी हो जाती है। एक दो चीज़ें इसमें थी, जैसे खतीयती का लफ्ज़ जो है उसको मैंने थोड़ा वाज़े नहीं किया, ये खतीयतुन की जमा है, ख़ता इसका रूट है और ख़ताया के मानों में आता है। अब आगे से फिर अंदाज़ थोड़ा सा हकूकुल इबाद की तरफ जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से अपने लिए सब कुछ मांग लिया तो साथ ही बाप की याद आई, जैसा भी हो बाप तो होगा, क्या वग़फिर ली अभी इन्नहु काना मिनद्दालीन, और बख्श दे मेरे बाप को, वो गुमराह लोगों में से है। यहाँ दालीन कह के बाप की बेइज्जती कर रहे हैं? नहीं, उसको हक से हटा हुआ समझ रहे हैं। दाल का लफ्ज़, पीछे बात हुई अभी चंद दिन पहले ही, कि दालीन का लफ्ज़ी माना सिर्फ गुमराह होना नहीं होता, नादान भी होता है, ना वाकिफ लोगों में भी होता है। कि अल्लाह मेरे बाप को भी पता ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं है कि मैं किस तरह से ऐसे काम करूं, मैं क्या करूं, उन तक इल्म नहीं पहुंचा, लिहाजा अल्लाह तो उनको भी बख्श दे। और ये दुआ कब हुई थी? जब उनको भी ये नहीं पता था कि ऐसे लोगों के लिए दुआ नहीं की जा सकती जो कि शिर्क पे मरे, पीछे हम बाप का किरदार भी पढ़ चुके हैं कि बाप तो कह रहा था ला अर्जुमन न का, मैं तुझे रजम कर दूंगा, लेकिन बेटा कितना वाहु मुनीब है कि वो कह रहा है कि अल्लाह मेरे बाप को भी माफ़ कर दे। इससे पता चलता है कि किसी इंसान की जितनी मर्जी बुराई सामने खुल जाए, ठीक है हम कुफर शिर्क इस वक्त बात नहीं कर रहे, ना कोई मसला दे रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हर बंदे की हिदायत की तड़प रखी है। रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन इब्राहिम अपने बाप को इस तरह देखेंगे कि उसके चेहरे पर स्याही छा रही होगी, पूछेंगे क्या आज मेरी बात आप मानेंगे अब्बा जी? तो बूढ़े अब्बा जी कहेंगे हाँ आज तो मानूंगा। कहा लेकिन आज मानने का फ़ायदा नहीं, आपको पहले मैंने कह दिया लेकिन आपने बात ना सुनी। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला उनको बिज्जू की शक्ल का बना देंगे जिनकी दुम से या पाँव से पकड़ के जहन्नुम इनको डाल दिया जाएगा। आप सोच लीजिए कि फिर कौन किसकी उम्मीद पे जिएगा और कौन किसको कल कुछ देगा। इब्राहिम जिनको खलीलुल्लाह का, आप सोचिए इस्लाम का मिजाज कितना क्लियर समझ आता है, खलीलुल्लाह का बाप आग में जा रहा है। लोग कहते हैं नहीं वो बाप नहीं वो चचा था, कि ये आज़र उनके बाप नहीं चचा थे, वजह क्योंकि नबी का बाप मुशरिक नहीं हो सकता। वो बेलाग अदालत है, वो ऐसी अदालत है बाप बेटे बेटी बाप किसी को फ़ायदा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वला तुख्ज़िनी यौम युबअसून, मुझे शर्मसार न करना उस रोज़ जब लोग कब्रों से उठाए जाएंगे, कि अल्लाह लोग कहेंगे खलीलुल्लाह का बाप आग में चला गया। ए अल्लाह अगर मेरी याद में कोई कमी हुई कोई कोताही हो गई तो उसके अंदर मुझे भी माफ़ कर दे, मेरे बाप को अगर आग में भेजेगा क्या हालात होंगे? ए अल्लाह तो उस वक़्त मुझे शर्मिंदा ना करना, क्योंकि यौम ला यन्फ़ौ मालुम वला बनून, जिस दिन ना माल काम आएगा ना बेटे। समझ आ रही है ना इत की, कि इब्राहिम बाप को काम में नहीं आएंगे और इसी तरह नूह अपने बेटे कनान के काम नहीं आएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसके अमल ने उसको पीछे छोड़ा उसका नसब उसको आगे नहीं बढ़ाएगा। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन जब इब्राहिम अपने बाप को बुरे हाल में देखेंगे तो अल्लाह ताला से कहेंगे कि अल्लाह ताला इनको माफ़ कर दें, फिर कहेंगे अल्लाह इससे ज़्यादा मेरे लिए और रुसवाई क्या होगी? तूने कहा था कि मैं तुझे रुसवा नहीं करूँगा और आज मेरा बाप आग में जा रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने जन्नत काफिरों पर हराम कर दी। फिर इनके बाप को नजासत में लुथड़े हुए बिज्जू की शक्ल में जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। ये सही बुखारी की रिवायत है। ना बाप ना बेटे कोई काम नहीं आएगा, तो बेटियां काम आएंगी? अब ऐसे लगता है कि इस आयत को पढ़ने के बाद कि कोई बाप बेटा औलाद माल काम नहीं आएगा, लेकिन कौन से बाप और बेटे या औलादें काम आएंगी? सूरत कहफ में आप पढ़ चुके, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातुस सालिहात, वही माल और वही बेटे काम आएंगे जिसको बाकियातुस सालिहात बना दिया, अपने हाथ से दे दिया, अपने हाथ से अल्लाह के हवाले कर दिया। जिनको जो ज़िंदगी में नहीं अल्लाह के हाथ में देंगे वो बाद में कहाँ जाएंगे अल्लाह की तरफ? वो तो रोएंगे कुछ भी करेंगे लेकिन फिर अल्लाह ही उनको लेके आएगा अपनी तरफ तो आएंगे। लिहाजा औलादों को और अपने मालों को अपने हाथ से उसको दे जाइए जिसके हैं वो, और इंसान के माल में वही माल उसका है जो उसने खा लिया और जिस्म से गंदगी बन गया, यानी कुछ एंजॉय कर लिया कुछ खाते ही नहीं तो माल उनका तो ना हुआ। दूसरी चीज़ जो पहन लिया, चलो खुश हो लिया कुछ पहन ओढ़ के गया चीथड़े बन के उतर गया जिस्म से, और तीसरा जो अपने हाथ से अल्लाह ताला की तिजोरियों में जमा करा दिया। फरमाया बाकी तो सारा माल जो है वो रसा का है। फिर तो लोग पूछेंगे कि फलां क्या छोड़ के गया। अब जब औलाद की बात हुई कि वहाँ औलाद और माल काम नहीं आएगा, तो फरमाया कि फिर काम क्या आएगा, क्या चाहिए वहाँ? फरमाया लमन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, मगर जो शख्स ले आया अल्लाह के हजूर सलामत दिल, कल्बे सलीम काम आएगा वहाँ, जो सलामत होगा। ये कौन सा दिल है? ये मोमिन का दिल है, जो शिर्क से सलामत, जो कुफर से सलामत, जो निफाक से सलामत, जो ख्वाहिशात से सलामत, रियाकारी से सलामत, उजुब से सलामत, अल्लाह के माँ सिवा हर चीज़ के जिक्र से सलामत, जो बुरी तकदीर से सलामत, जो बिदत से सलामत, वो जो हर उस चीज़ से सलामत रहा जिससे अल्लाह की याद में कुछ खलल पैदा होता है। इस एक सलामती के ऊपर कितनी मुख्तलिफ रिवायतें हमें मिलती हैं। कोई कहता है ये उस शख्स का दिल है कि जिसने सिर्फ अल्लाह ताला पे अपने आप को रखा। कोई कहता है बुरी तकदीर से बच गया, बुरी बातों से बच गया। मुझे तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि लोगों, जिस तरह काफिरों के दिलों में मर्ज़ है ना, पीछे याद कीजिए सूरत बकरा में मुनाफिकीन की बात आई तो क्या लफ्ज़ आया, फ़ी कुलूबिहिम मरदुन। काफिर का दिल बीमार होता है, मोमिन का दिल सलामत होता है। काफिर कुफर के साथ जितना माल औलाद खर्च करे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह बिदती बिदत के साथ जितने मर्जी नेक अमल करे उसको फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे लोगों की औलादें बाद में जितनी मर्जी नेकियां करें उनको फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जो वाकई हकीकत में अल्लाह के साथ लग गया, जिसका दिल सलामत रहा, वो काम आएगा। और इस अरबी इस लफ्ज़ को जब डिक्शनरी में मैंने देखा तो मेरा दिल किया कि वाकई अल्लाह को सजदा करूं। शायद आपने इसका सलीम लफ्ज़ का वो मानी पहले कभी सुना हो कि ना सुना हो, लेकिन आपको पता है कि सलीम किसको कहते हैं? सलामत तो कहते ही ना, सलामत से ज़हन में क्या आता
बिल्कुल
है? बहुत सॉलिड किस्म की कोई चीज़। हालांकि डिक्शनरी में सलीम कहते हैं उस शख्स को जिसे सांप डस ले। सांप का डसा हुआ शख्स सलीम है, लदीख के मानी में। क्या मतलब है? कि वो शख्स जिसका दिल सांप के डसे हुए शख्स की तरह हर वक्त अल्लाह की नाराज़गी के खौफ से फड़कता रहे, तड़पता रहे। जो लोगों को खैर देने के लिए तड़पता रहे वही कामयाब होगा क़यामत के दिन। जिसको एक गम था ला अल्लाह का बाख्यन नफ्स का वाली कैफियत जो अल्लाह के नबी थी, जो हर लम्हे इस फिक्र में थे कि अल्लाह ये इंसानियत आग में ना चली जाए। अल्लाह के नबी फरमाते थे कि लोगों मैं तुम्हें पकड़ पकड़ के तुम्हारी कमरों से उठाता हूँ, तुम जहन्नुम के किनारों पे पहुँचे हुए हो, और मैं तुम्हारी कमर से पकड़ कर तुम्हें लाता हूँ कि आओ तुम मेरी तरफ पलट कर आओ, इस जहन्नुम से पीछे हट जाओ। इस तड़प को महसूस कीजिए और फिर कहिए कि लमन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, और जिसका दिल हर ख्वाहिश में टूटा रहे। अब देखिए कि दिल की ये सलामती जो है ना, असल में यही अबूदियत है। ये जो दिन में 17 बार कहते हैं ना या का नाबुदू, असल में हम ये कहते हैं कि अल्लाह अतल्ला का तेरे पास आ गई हूँ अल्लाह भी कल्बिन सलीम। लोग ज़ाहरी हुसन की कोशिश करते हैं, अल्लाह की नज़र दिलों पे है। हज़रत अबू हुरैरा से एक रिवायत है कि लोगो इन अल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, अल्लाह नहीं देखता तुम्हारी सूरतों को और तुम्हारे मालों को। कितने हसीन हो तुम, कितने मालदार हो, अल्लाह नहीं देखता। अबू लाहब भी बड़ा खूबसूरत था, फिरौन भी बड़ा खूबसूरत था, अल्लाह ने नहीं देखा। हाँ अल्लाह देखता है मगर इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है। तो दिल वो जगह है जहाँ अल्लाह की नज़र पड़ती है। लोगों की नज़र पड़ती है जिन जगहों पे उसको साफ करते हैं। घर के वही कोने साफ करते हैं जहाँ लोगों की नज़र पड़ती है। तो दिलों को साफ करना है ताकि रब की नज़र पड़े। सफाई सुथाई करते हैं तो क्या करते हैं? गंदी मंदी ख़राब चीज़ें, बेकार चीज़ों को इधर उधर रखते हैं ना, निकाल देते हैं। क्या इस सफाई कर रहे हैं? सारी बेकार चीज़ें निकाल दी। अल्लाह कहते हैं कि अपने दिलों के अंदर से सारी बेकार चीज़ों को निकाल दो, क्योंकि इस पे रब की नज़रें पड़ने वाली हैं। कोई नापसंदीदा चीज़ तो नहीं रखी हुई दिल में जो अल्लाह की नज़र पे आ गई तो मेरा मुकाम कम होगा। जब अल्लाह की नज़र किसी के दिल पे पड़ती है ना, तो वहाँ ईमान पैदा होता है। पीछे हम पढ़ चुके अल्लाह नूर समावाति वल अर्द मसल नूर ही का मिशकात। वो कहते हैं जो कहीं ना समा सका वो बंदा मोमिन के दिल में समा गया। कि अल्लाह तू तो सारी जहतों से पाक है, लेकिन अल्लाह बंदा मोमिन के दिल में आ जाता है। जब अल्लाह की नज़र पड़ती है तो फिर दिल में ईमान का बीज पैदा होता है, और अल्लाह की मोहब्बत दिलों की खुशबू है। जब दिल खूबसूरत होता है ना तो फिर आमाल भी खूबसूरत होते हैं। हमारे अज़ा से जितने अमल खूबसूरत होते हैं ना, ये दिल के अमाल का नतीजा है। दिल के कितने अमल है ना, खशियत भी दिल का अमल है, اخلاص بھی دل کا عمل ہے، توکل دل کا عمل ہے، اللہ پر اعتماد، خشیت، سب سے بے نیاز ہو جانا، یہ دل کا عمل ہے. ہم جتنا ان چیزوں میں آگے جائیں گے نا، اتنے ہمارے ظاہری عمل خوبصورت ہوں گے. اور اللہ جب دیکھے گا کہ اس دل میں تو بغض بھرے ہوئے ہیں، کینے بھرے ہوئے ہیں، دوغلا پن بھرا ہوا ہے، تو کیا ہوگا؟ اب ہر ایک اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ کیا میرا دل سلامت ہے. اب دیکھیے کہ ایک بندہ مومن کی بہترین منظر کشی ہے یہاں لفظ من میں، من ات اللہ بقلب سلیم. ایک ہی وقت میں صحت مند دل بھی ہے، ہر بیماری سے پاک، ہیلدی ہارٹ، اور دوسرے وقت میں وہ سلیم سانپ کا ڈسا ہوا شخص بھی ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ خود کو ہر وقت صحت مند رکھنا ہے، اپنے دل کو گندی چیزوں سے پاک کرنا ہے، اور دوسروں کی فکر کرنی ہے، یہ ہے قلب سلیم. اور دل سجتا ہے تو چہرہ بھی سجتا ہے، اندر صحت ہوتی ہے تو باہر بھی آتی ہے. جس کو کہیں چین نہ آئے، جس کو تڑپ لگ جائے، جس کو ہر لمحے فکر یہ ہے کہ اللہ میرا بنے گا کیا، اللہ بندوں کا کیا بنے گا. آپ دیکھیے اللہ کے نبی اگر اپنی ذاتی زندگی بسر کرتے تو کتنے کامیاب تھے. آپ امیجن کریں ایک شخص جس کی چلیں چار بیویاں، چاروں بیویاں اس کے لاڈ دیکھنے کے لیے تیار، اس کے لیے کھانے پکانے کے لیے تیار، اس کے لباس کے لیے تیار، اس کے گھر کو صاف کرنے کے لیے تیار. سات بیویوں کو بھی لے لیں، ہفتے کے ساتوں دن اللہ کے نبی کے گزر سکتے تھے نا عیش میں. جس بیوی کے گھر سات دن کے بعد جاتے ہو، وہ ہر ممکن کوشش کرے گی نا خدمت کرنے کی، اپنے بھی حال حلیے سے اور گھر سے بھی اور کھلانے پلانے سے. کتنی پرسکون زندگی تھی اللہ کے نبی کی، کیا کمی تھی. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ، یہ سلیم و تباہ ہونا ہی تڑپاتا ہے، یہ کام کرواتا ہے. یہ محبت ماؤں کو راتوں کو جگاتی ہے کہ میرا بچہ گیلے پہ نہ سوئے، میرا بچہ گر نہ جائے رات کو، میرا بچہ بھوکا نہ رہے، میرے بچے کے گلے میں کمبل نہ گھس جائے. تڑپاتی ہے نا ماؤں کو. یہ تڑپ جب تک انسانیت کے لیے نہیں آئے گی، کام نہیں ہوگا. اس کے لیے پھر انسان کو فیول چاہیے ہوتا ہے. یہ محبت ملتی ہے اللہ کی یاد سے. یہ قرآن کی یہ محفل جو 2 گھنٹے کی ہے نا، یہ باقی 22 گھنٹوں میں ہمیں کام کرنے کے قابل کرتی ہے. یہ ہماری بے چینیوں کو چین دیتی ہے، یہ ہمارے درد کی دوا ہے. اس سے دور جائیں گے تو کٹیں گے، کچھ نہیں ملے گا، صرف ڈپریشن اور اندھیرے ہیں. علامہ اقبال اپنے بیٹے کو بد دعا دیا کرتے تھے. بد دعا میں نے صرف اس لیے کہا کہ ہمیں یہ بد دعا لگے گی، لیکن اصل میں وہ ایک باپ کی دعا تھی. ان کا بیٹا جوانی میں کوئی دین کی طرف زیادہ مائل نہیں تھا، نام نہیں لیتی، جانتے ہیں لوگ، جس طرح کہتے ہیں کہ جوانی کا جوش ہوتا ہے، تو اپنے بیٹے کو کہا کرتے تھے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے، کہ تیرے بہر کی موجوں میں اضطراب نہیں. کہتے تھے کہ بیٹے تجھے کوئی حادثہ لگے، کوئی چوٹ پڑے، پھر تیرے اندر گرمی آئے اور پھر تم مضطرب ہو کے اللہ کی طرف آئے. کہ جو لوگ غموں میں اللہ کی طرف آتے ہیں، اور واقعی وہ غم بڑے پیارے ہوتے ہیں جو بندے کے دل کو قلب سلیم بنا دیں. سب کچھ چلا جائے بندے کا، رب مل گیا تو نفع کا سودا ہے. کیونکہ دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرد کوہن کا چارہ. یہ دل ٹوٹے ہوئے، آج دل توڑنے کی ضرورت ہے. دنیا سے دل ٹوٹے گا تو رب کی یاد میں لگے گا. جب ساری زندگی اپنی زندگی گزار دی تو اللہ کے لیے کہاں دل ٹوٹے گا. آپ کو ہے کہ بچہ جب بنتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، سب سے پہلے عضو جو بنتا ہے نا وہ دل بنتا ہے اور کام شروع کرتا ہے. اور بندہ مرتا کب ہے؟ آخری چیز جو مرتی ہے وہ بندے کا دل مرتا ہے. یہ دیکھ لیجئے، یہ دل ہے، ایک ایک سیل کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے ڈائریکٹ جسم کے اندر. ہم سوچتے ہیں تو دل سے سوچتے ہیں، ہم پیار کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں تو دل سے سنتے ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے، ہم تو کانوں سے سنتے ہیں. نہیں، بٹھائیں کسی کو جو نہیں سننا چاہتا، بعد میں ایک لفظ نہیں اس نے سنا ہوگا. کیوں؟ میں نے نہیں سننا، آپ نے زبردستی کی تھی، میں نے بھی نہیں سنا. کان بند کر لیتے ہیں لوگ. آپ وہ دیکھتے ہیں جو آپ کا دل آپ کو دکھاتا ہے. یہ دل جو نا، یہ چودھری صاحب ہے، صدر ہی کہتے ہیں اس کو، صدور، صدر، سینے کی چیز. یہ دل سے سارے پیغامات جاتے ہیں. یہ ہاتھ جو ہے نا، یہ ہمارے आंखें कान ज्वार, ये राय है। इस पे एक लेक्चर सुन ले आप अगर आज सुन सके, दिल बदले सीरीज में है दिल के लश्कर। उसमें पूरे एक शहर को हमने बसाया था कि जैसे एक शहर है ना, उसका डाउनटाउन होता है, फिर उसकी साइड की गलियां होती हैं, इस तरह हमारे जिस्म का डाउनटाउन हमारा दिल है। सबसे ज्यादा कंजस्टेड, सबसे कीमती जगह जो होती है वो डाउनटाउन में ही होती है। ये दिल बड़ा कीमती है, इसको मत जाया करें। ये 4 दिन के लिए धड़केगा नहीं, ये सारी जिंदगी के लिए धड़केगा। आपको ऐसी जिंदगी दे देगा जिसको कोई जवाल नहीं। सुनिए, इंजॉय करेंगे आप। बहुत दिलचस्प है उसमें कि हमारा ये जिस्म पूरे का पूरा एक शहर है। इसकी नालियां भी हैं, इसकी गलियां भी हैं, इसमें गटर सिस्टम भी है, इसमें पहाड़ भी हैं। बल्कि अब तसव्वुफ के नाम पे किताबें पढ़े, वो पूरे जिस्म को इस कायनात से टैली करते हैं। ये नाक को पहाड़ कहते हैं वो लोग। ये जो हमारे जिस्म पे बाल होते हैं ना, इसको ये सब्जा कहते हैं। ये जो हाथ की स्किन है, इसको मट्टी कहते हैं। सच पूछे ना तो भी दिल ही नहीं बदला। जिस दिन दिल बदल गया, फिर दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। ये तो धोखा है। फलां नहीं चाहता, फलां मना करता है, फलां के माथे पे तेवरी आती, वल्लाह ही फलां नहीं चाहता, दिल नहीं चाहता। अफी कुलूब ही मरदुन, अल्लाह कहते इनके दिलों में मरज है। चलो फिर, फजादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह फिर दिलों को बढ़ाता है, और बीमार हो जाओ फिर। और जब दिल का मरीज परहेज करना छोड़ देता है ना, फिर और जल्दी मरता है। जो डॉक्टर के कहने पे अपने आप को पीछे नहीं करता ना, घी से और नमक मिर्चों से और मीठे से, वो जल्दी मर जाता है। फिर आप एक और खूबसूरत रब देखिएगा, ये दो मुतजाद मानों में। सेहतमंद दिल ज्यादा पंप करता है। आप कभी किसी हार्ट पेशेंट को पूछे, हार्ट बीट का उसके कितना एक ताल्लुक होता है, ज्यादा तेज होती है, कभी डाउन होती है, ये पल्स डूबती है, नब्ज डूबने लगी, क्या हुआ? सेहतमंद दिल तड़पता है। वही सलीम लदीफ के मानों में याद रखिए, जो बंदा सेहतमंद होता है ना, वही दूसरों के लिए तड़पेगा। उसको गम है कि दूसरे ना मर जाएं, दूसरे ना चले जाएं। और जो दुनिया से बचाकर अल्लाह के पास ये दिल लाएगा कि अल्लाह बड़ी मुश्किल से लेके आई हूँ ये आपके लिए, लोगों ने तो बड़ा ही मांगा था ये दिल। हर चौक पे, हर गली पे, हर कोने पे लोग हमसे तकाजे कर रहे हैं कि अपना दिल मुझे दे दो, लेकिन हम भी इसको छुपा के, पैक करके, रैप करके लेके जा रहे हैं अल्लाह के पास। ये है वो एस्प्रीन जो दिल की धड़कन को मुनासिब रखती है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जो ये गवाही देगा उसका दिल धड़केगा। इमाम सीरी है, कहते हैं जो ये जानता है कि अल्लाह हक है, क़यामत आने वाली है और कब्र वालों को अल्लाह उठाएगा, वो है कल्बे सलीम। इब्ने अब्बास कहते हैं जो ये गवाही दे के अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो है कल्बे सलीम। फिर कल्बे सलीम के बाद अगर माल भी मिल जाए, बेटे भी मिल जाए, तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। वो सेंत सेंत के नहीं रखता, और वो बेटों के सिर्फ अपने मुआशी मुस्तकबिल से ही नहीं उनको जोड़ता कि बेटों बड़े होके क्या कमाओगे और क्या दोगे। आप देखिए कि अमूमन इंसान अपनी औलाद के लिए बेहतरीन चीज़ पसंद करता है ना, बेहतरीन चीज़ अपने बच्चों के लिए संभाल के रखता है। इसी तरह जिसका दिल कल्बे सलीम बनता है ना, तो वो बच्चों को तो बेहतरीन देना चाहेगा, लेकिन साथ सबसे बेहतरीन चीज़ अल्लाह को देता है। हज़रत खदीजा शहर की अमीर तरीन औरत थी। कोई बुरी बात नहीं है माल कमाना, लेकिन देते कहाँ ये देखें। सारा अल्लाह के नबी को दिया और 3 साल शाबे अबी तालिब में दरख्तों के पत्ते खाए। क्यों? मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। आप रूखी सूखी खाएं, आप कहते नहीं मैं गुजारा कर सकती हूँ इस रोटी को खा के, मैं क्यों 50 रुपये ज़ाया करूँ? हाँ, इसको दो अल्लाह के रास्ते में। ये कल्बे सलीम होता है जब से सही फैसले करवाता है। और शाबे अबी तालिब में इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वक्त से पहले, जिसको कहते हैं कि बूढ़े हो जाएं, उसकी मुशक्क़तें बर्दाश्त नहीं कर सकी। अल्लाह के नबी कभी दर्द महसूस किया करते थे खदीजा का, कि कुफार के इन मजालिम ने मेरी खदीजा की सेहत को ख़राब कर दिया, बर्दाश्त ना कर सकी, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो चुकी थी। माल दे के बैठ जाती, आराम से बैठ गई थी, दे दिया माल अल्लाह के नबी को। अब 3 साल में शाबे अभी तालिब में हो, हम कहते नहीं माल दे देंगे, हमारे काम कोई और कर दे। बस दुआ करें कि मज़ा आने लगे अल्लाह के रास्ते के काम करते हुए। तिलावत सुने यहाँ तक।
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي